माहिरा को ड्राइंग रूम में खड़े खड़े जुबैदा बेगम की डांट सुननी पड़ रही थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि माहिरा ने रेहान की दोस्त की बहन से न तो ढंग से बात की थी, बल्कि बातों बातों में उसकी कहीं ना कहीं बेइज्जती भी कर दी थी। एक कोने में अरमान चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था, ना कुछ कह रहा था, ना ही किसी का साथ ले रहा था। अब तक तो तुम्हारे डैड को तुम्हारे ताया अब्बू ने सब कुछ बता दिया होगा, जुबैदा बेगम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। देख लेना, रेहाना आती ही होगी। माहिरा झुंझला गई। तो आप पहले ही डैड से बात कर लीजिए ना माम, उसने तेज आवाज में कहा। पहले से उन्हें मेंटली प्रिपेयर कर दीजिए, ताकि रेहाना ताई और फरीद ताया की बातों का उन पर ज्यादा असर ना हो। जुबैदा बेगम ने हैरानी से उसे देखा। मैं उन्हें मेंटली प्रिपेयर कैसे करूं? उनके लहजे में थकान साफ झलक रही थी। माहिरा ने तंज कसती हुए कहा, आपको अभी तक अपना शौहर हैंडल करना नहीं आया। रेहाना ताई को देखिए, फरीद ताया तो उसकी आंख के इशारे पर नाचते हैं। ये सुनकर जुबैदा बेगम का चेहरा सख्त हो गया। अब मेरी औलाद भी तो उसकी औलाद जैसी नहीं है, उन्होंने कड़वाहट के साथ कहा। फिर उन्होंने गुस्से और मायूसी के मिले जुले लहजे में आगे कहा, रेहान को देखो, हर बिगड़ी बात संभाल लेता है, मगर तुम दोनों बनी बनाई बात को भी बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो साफ तौर पर अपने बच्चों से परेशान थीं। कुछ पल की खामोशी के बाद जुबैदा बेगम ने माहिरा को समझाने की कोशिश की। देखो माहिरा, रिश्तों की कदर करना सीखो, ज्यादा के पीछे भागोगी तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। उसी वक्त फैजान हाल के पास से गुजरा। माहिरा की नज़र उस पर पड़ी और न जाने क्यों उसके अंदर जमा हुआ सारा जहर बाहर आने लगा। मुझे पता है आप किसकी बात कर रही हैं, माहिरा ने तीखे शब्दों में कहा। और साफ साफ कह दूं, मैं वो नहीं चाहती जो आप चाहती हैं, जैसे आप जबरदस्ती किसी फ्री के माली, नौकर या केयरटेकर को मेरी जिंदगी में लेकर आई हैं। आपका इशारा फैजान की तरफ ही है, उसके शब्दों में जहर था, नफरत थी, खासकर फैजान के लिए। मैं अपने भाई की जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं चाहती, उसने आखिरी बार किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। जुबैदा बेगम कुछ कह नहीं पाईं, अरमान की नज़रें छुप गईं और फैजान, वो बिना कुछ सुने समझे वहां से आगे बढ़ गया। शायद आदत थी, शायद मजबूरी, लेकिन माहिरा के बोले गए शब्द दीवारों से टकराकर अब भी पूरे घर में गूंज रहे थे। रेहाना बेगम के घर की डाइनिंग टेबल पर आज पूरी फैमिली जमा थी। गरम गरम खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। रेहान भी आ चुका था। सादिया, फरीद खान, रेहाना बेगम, इकबाल और उसकी बेटी नूर सभी सुकून से खाना खा रहे थे, लेकिन माहौल में एक हल्की सी गंभीरता खुली हुई थी। खाने के दौरान इकबाल का ध्यान बार बार कहीं और चला जा रहा था। दरअसल जिस घर में वो रहता था उसी घर के एक हिस्से में उसने किरायेदार रखा हुआ था। वो किरायेदार ना तो घर खाली करने को तैयार था और ना ही समय पर किराया देता था। इसी बात को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था और केस चल रहा था। उसी केस के सिलसिले में इकबाल को अक्सर शहर आना जाना पड़ता था। कुछ पल की खामोशी के बाद रेहाना बेगम ने बड़े अपनत्व से बात छेड़ी। अच्छा भाई साहब, आपके केस का कुछ बना या नहीं? अब तक कोई फैसला हुआ? इकबाल ने हल्की सी मुस्कान के साथ लेकिन थके हुए लहजे में जवाब दिया, बस तारीख पर तारीख पड़ रही है भाभी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तभी रेहान ने बिना ज्यादा सोच विचार की अपनी राय रख दी। मैं तो कहता हूँ आप वो घर ही बेच दीजिए, बेकार की टेंशन खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनते ही नूर चौंक पड़ी। उसने तुरंत थोड़े भावुक लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं, हम अपना घर क्यों बेचेंगे अब्बा, वो हमारा घर है, हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। नूर के बोलने का तरीका थोड़ा सख्त और सीधा था। रेहान ने उसकी तरफ देखा जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो कि किसी ने इस अंदाज में उसे जवाब दिया है। सादिया ने भी हैरानी से नूर की ओर देखा। सच तो ये था कि आमतौर पर रेहान की बातों का इस तरह खुलकर विरोध कोई नहीं करता था। रेहान ने फिर एक बात की तरफ रुख किया और शांत लेकिन साफ शब्दों में बोला, चाचा, घर छोड़ने और घर बेचने में फर्क होता है। मैं घर छोड़ने की नहीं, बेचने की बात कर रहा हूँ। असल में ये जवाब उसने नूर की बात को ध्यान में रखकर दिया था। उसकी आवाज में न तो गुस्सा था और न ही तंज, बल्कि एक समझदार सलाह की झलक थी। इकबाल ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ एक पल को दिल पर आ बैठा हो। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, उन्होंने कहा, लेकिन इंसान के लिए उसका घर सिर्फ ईंट पत्थर ही होता, उसमें उसकी यादें, उसकी मेहनत और उसका आत्मसम्मान जुड़ा होता है। नूर ने चुपचाप अपने अब्बा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपने घर के लिए प्यार भी था और डर भी कि कहीं हालात उन्हें वो फैसला लेने पर मजबूर ना कर दें जिसे वो कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी। डाइनिंग टेबल पर फिर से खामोशी छा गई। खाने की आवाजें थीं लेकिन हर किसी के मन में अपने अपने ख्याल चल रहे थे। ये साफ था कि ये मामला सिर्फ एक केस नहीं था बल्कि पूरे परिवार की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। इकबाल ने बड़े सुकून और ठहराव के साथ एक और बात कही, बेटा, जब तक उस घर में किराएदार कब्जा करके बैठा है तब तक कोई समझदार इंसान उसे खरीदेगा भी नहीं। उसके लहजे में ना गुस्सा था ना शिकवा, बस हकीकत की सादगी थी। रेहान ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ घर बिकवाने में। जो भी खरीदेगा वो खुद ही किराएदार को खाली करवा लेगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नूर ने तुरंत जवाब दे दिया, जरूरत नहीं है। इस बार इकबाल कुछ नहीं बोले। जवाब उसकी जगह नूर ने दिया था, हम किसी का एहसान नहीं लेते,
रेहान ने उसकी तरफ बेहद हैरानी से देखा। वो नूर को समझने की कोशिश कर रहा था। सच तो ये था कि नूर स्वभाव से ही बहुत मुंहफट थी, जो दिल में आता बिना सोचे समझे कह देती। बहस करना और सामने वाले को जवाब देना जैसे उसका पसंदीदा शौक था। इकबाल ने उसे कभी इस आदत के लिए नहीं टोका था। हाँ, ये अलग बात थी कि उसकी अम्मी अक्सर उसे समझाया करती थी कि हर बात हर जगह कहना जरूरी नहीं होता। नूर ने बिना रुके आगे कहा, और वैसे भी अगर हमने घर बेच दिया तो हम रहेंगे कहाँ? उसकी आवाज में सवाल भी था और चिंता भी। तभी सादिया ने बात संभालने की कोशिश की, अरे घर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे नया घर ले लेना। नूर ने तुरंत पलट कर देखा, और अगर उन पैसों में नया अच्छा घर ही ना मिला तो? उसका सवाल सीधा था लेकिन असरदार। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। इकबाल ने बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपने घर को लेकर डर भी था और भविष्य को लेकर असमंजस भी। वो जानता था कि नूर का लहजा भले ही सख्त हो, लेकिन उसकी बातों में उसका अपनापन और अपने परिवार के लिए फिक्र छुपी होती थी। रिहाल अब खामोश था। तुम हमारे साथ आकर रह लेना, रेहाना बेगम ने मुस्कुराते हुए बड़े अपनत्व से कहा। हमारा घर वैसे भी बहुत सुनसान रहता है, और तुम जैसी मैना जो बिना रुके बिना डरे बोलती है, ऐसी लड़की की हमारे घर में बहुत जरूरत है। घर में रौनक आ जाएगी। रेहाना बेगम ने बड़ी समझदारी से बात को संभाल भी लिया था और माहौल भी बदल दिया था। फरीद खान ने भी हामी में सिर हिलाया। उनकी बातों का असर ये हुआ कि डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन नूर की भौहें तन गईं। मैं वहां क्यों रहूं? उसने साफ और तीखे स्वर में कहा, जहां रहकर मुझे बार बार अपनी इंसल्ट करवानी पड़े। नूर की इस बात पर रेहान और सादिया दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना खुलकर क्या कह रही है। रेहाना बेगम ने नरमी से कहा, अरे मैंने तो अभी बताया ना कि हमारे लिए तुम्हारी कितनी अहमियत है, तुम हमारी बेटी हो। नूर ने हल्की सी मुस्कान के साथ लेकिन बाद में कसक लिए जवाब दिया, वो तो आपके लिए है, बाकी लोगों के लिए थोड़ी है।
ये कहते हुए उसने सीधी नजर रिहान की तरफ डाली। उसकी आंखों में शिकायत साफ झलक रही थी। प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और व्यू देना याद रखें।